वंदन Aberdeen. Tante Karela. Kuswamini. यहाँ सभाध्यक्ष में उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग और स्वयं से भाई और बहन, आज 25 सितंबर है और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर एक विचार प्रवाह के अंदर हम सब लोग प्रवाहित हों, इस उद्देश्य से शायद इस कार्यक्रम की कल्पना की गई। दीनदयाल जी के संबंध में सबकी अपनी अपनी धारणा है। व्यक्ति हाथी को देखता है तो जिसको जैसा अंग मिलता है वो वैसी धारणा बनाता है। जैसा मुझे ध्यान में आता है वैसा मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। उसका कोई पक्ष सहमति और असहमति के बीच का हो सकता है, लेकिन जितनी समझ है, क्योंकि दीनदयाल जी अपने आप में एक ऋषि हैं, एक विचारक हैं, और विचारक के साथ समस्या यही होती है कि उसको ठीक से समझने वाला उत्तराधिकारी बहुत मुश्किल से मिलता है। वो किस संदर्भ में वेद व्यास क्या कहता चाहते हैं, वाल्मीकि क्या कह रहे हैं, तुलसी क्या कह रहा है, इसको समझना आसान नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कोशिश करूंगा, और जो कुछ वो कहते थे वस्तुतः दीनदयाल जी के सारे विचार जो हैं वो मंत्र हैं। मंत्र की विशेषता यह होती है कि मंत्र घनीभूत होता है, जैसे अमृत, जैसे घी, जैसे शहद, जैसे उपनिषदों के मंत्र, जैसे गीता के मंत्र, श्लोक, ये सब घनीभूत है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ थॉट्स है। ये सूत्र हैं गणित के, और अपने आप में घी कोई मिठाई नहीं, अपने आप में शक्कर कोई मिठाई नहीं। उसको ठीक से जब हम ब्लेंड करते हैं, चीजों में मिलाते हैं, तब वो मिठाई बनती है, तब वो समाज के योग्य बनती है। दीनदयाल जी जो कुछ व्यक्त कर गए वह सूत्र थे, वो मंत्र थे। उन मंत्रों को समझ करके कैसा भारत खड़ा करना है उसको उसके बाद वाली पीढ़ी को समझना पड़ेगा। हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय यह है कि एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुविद हमारे सामने एक नक्शा टेबल पर रख करके इस दुनिया से चला गया। उनकी असमय जो मृत्यु है, ये असमय मृत्यु उस नक्शे को बना करके उसके क्रियान्वयन के पहले इंजीनियर के चले जाने की व्यथा है। और वो जो नक्शा उन्होंने रखा वो नक्शा एकात्म मानववाद है। इस एकात्म मानववाद का प्रतिपादन उन्होंने किया और उसके तत्काल बाद वो इस संसार से चले गए। तो मान लीजिए कोई भवन बनाना था और उसका नक्शा रखा है, यहाँ खिड़की आना है, यहाँ दरवाजा आना है, ये कॉलम यहाँ तक जाना है, ये बीम यहाँ से यहाँ जाना है, ये वेंटिलेशन के लिए छूटना है, इसकी रूफ हाइट इतनी रहेगी, ये सारी की सारी बातें इंजीनियर को मालूम थी, और वो इसको बताए बगैर, इसको खड़ा किए बगैर हम लोगों के बीच में से चले गए और शुद्ध रूप में एकात्म मानववाद दे। अब ये उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि कौन किसको क्या समझता है, उसके आधार पर वो क्या खड़ा करता है। मैं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जिन लोगों ने उसको उतारने की कोशिश की उनको नमन करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि दीनदयाल जी अगर जिंदा होते और अपने सामने जनसंघ की जो कल्पना करते, पत्रक कैसे जाना चाहिए, भाषा क्या होना चाहिए, संबोधन क्या होना चाहिए, कार्यालय कैसा होना चाहिए, प्रवास के समय कार्यक्रम क्या होना चाहिए, प्रवास का विवरण लिख करके देना हो तो कैसे देना चाहिए, ये वो बहुत छोटी छोटी बातें, बारीक बातें हैं जो मुझे लगता है दीनदयाल जी के साथ चली गई। चीज तो खड़ी हो ही जाती है, माँ बाप मर जाए तो बच्चे बड़े नहीं होते, ऐसा तो है नहीं, संगठन रुकता तो है नहीं, संगठन चलता रहता, संगठन चलता रहा, संगठन का विकास होता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों से काम करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इन बारीक बातों की ओर जो कि केवल स्वप्न दृष्टा ऋषि ही कर सकता है वो छूट गई। तो फिर पड़ोसी जैसा शर्ट पहनता था वैसा हम पहनने लग गए, वो जैसा उठता बैठता था वैसा हम करने लग गए। पॉलिटिक्स करने के हमारे यार्ड स्टिक और मापदंड जो है वो बदल गए। हमें एक नई धारा शुरू करना थी, हमें एक नया प्रवाह शुरू करना था जो हमने करने की कोशिश की, लेकिन वो नई की नई धारा होना उसमें कहीं ना कहीं दीनदयाल जी के चले जाने के कारण कमी पाई, और इस कमी को सभी अनुभव करते हैं। दीनदयाल जी की अनुपस्थिति को हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन चले जाने के बाद अब उनको लेकर के तो हम रुक नहीं सकते, ये देश कभी रुकता नहीं है। उनके जाने के बाद हमें जो कुछ लगता है उसको ध्यान में देकर समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के पुत्र को जो चिट्ठी लिखी, जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये सोचो कि महाराज होते तो क्या सोचते, महाराज होते तो कैसे बात करते, महाराज होते तो क्या कहते, महाराज होते तो इसके संबंध में क्या निर्णय करते, वैसा सोचो और करो। बस ऐसा करने से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य है वो फलित होगा। तो मुझे लगता है कि दीनदयाल जी के संबंध में विचार करते समय अपने अपने स्थान पर हर किसी ने यही सोचना चाहिए कि दीनदयाल जी अगर उपस्थित होते मेरी जगह तो वो इसमें क्या निर्णय लेते, वो क्या कहते, और वो जो कहते वो जो करते उसको जितना हम कर सकते हैं बस यही उनके पदचिन्हों पे चलने का एक माध्यम हो सकता है। दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद की अवधारणा हमारे सामने रही उसके केंद्र में उन्होंने कहा कि जो बहुत बड़ा पोर्शन जिसका विचार प्रवाह का है वो अर्थ पे है, और अर्थ के संबंध में चाणक्य ने कहा है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। इसको दीनदयाल जी ने भी कहा, उन्होंने कहा है कि इस संसार में कोई बोलता है उद्योग डाल दो, कोई बोलता है शादी कर लो, कोई बोलता है नौकरी करो, कोई बोलता है मैं देश के लिए काम करूंगा, कोई बोलता है मैं सरहद पे शहीद हो जाऊंगा, सब के सब काम मुक्ति की इच्छा भी अंतोगत सुख की तलाश में निकली हुई यात्रा है। हर आदमी सुख चाहता है और वो सुख उसका अलग है। इस सुख का जो मूल है वो चाणक्य कहता है धर्म है, और धर्म की व्याख्या यह है कि धर्म सर्वकालीन सत्य होता है। धर्म ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में तो ठीक है लेकिन यूरोप में ठीक नहीं है, अलास्का में ठीक नहीं है, अमेरिका में ठीक है। साइंस का अगर ग्रेविटी का कानून है, उसका कोई नियम है, तो वो पूरे पृथ्वी पर समान रूप से स्वीकार्य है, मान्य है। जो चीज सब जगह मान्य है वो धर्म है, जो कहीं मान्य है और कहीं मान्य नहीं है वो संप्रदाय है। सत्य बोलना चाहिए ये धर्म है, अहिंसा धर्म है, परस्पर जीवित रहने और जीने दो के जो सिद्धांत है ये धर्म है, और ये विश्व में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन मैं ही रहूंगा और दूसरे नहीं रहेंगे, मैं ही श्रेष्ठ हूं और तुमको नहीं रहने दूंगा, या तो तुम मेरे धर्म में परिवर्तित हो जाओ या मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये सब संप्रदाय है। चाणक्य कहता है, जिसको दीनदयाल जी उद्घोषित करते हैं, वो कहते हैं कि धर्म इसका मूल है, और धर्म के मूल को कहते हैं कि अर्थ उसका मूल है। और दुर्भाग्य यह है कि अर्थ की हमने बहुत छोटी परिभाषा रखी है, क्योंकि हम बॉर्न एंड ब्रॉटअप यूरोप है, बॉर्न एंड ब्रॉटअप से शरीर से नहीं बुद्धि से, हम जो शिक्षा लेते हैं, हमको जो कुछ समझाया जाता है KG 1 KG 2 से लगा करके जो भी शिक्षा मिलती है, और उसी का ही परिणाम है कि हर एक को ऐसा लगता है कि इस पद्धति से निकलने पर ही सत्य है। उस पद्धति के अंदर अर्थ के संबंध में फाइनेंस वित्त उसकी बहुत सीमित परिभाषा है। हमारे देश के अंदर वित्त की परिभाषा बहुत व्यापक है, वस्तु के बदले में सेवा वित्त है, वस्तु से वस्तु का विनिमय वित्त है, वस्तु से धातु का यानी सोना चांदी का विनिमय वित्त है, वस्तु से मुद्रा का विनिमय वित्त है। बहुत विस्तृत परिभाषा है वित्त की और मुझे लगता है कि इस संसार में कुछ भी वित्त से मुक्त नहीं है। इसलिए चाणक्य ने जब पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक का नाम राजनीतिक शास्त्र नहीं रखा, उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा अर्थशास्त्र। दीनदयाल जी ने जब एकात्म मानववाद की संकल्पना सबके सामने रखी तो उसमें अपनी अर्थ आयाम और अर्थ नीति को प्रधान माना। उन्होंने कहा कि अर्थ से ही सब कुछ होता है, और जब हमने कहा तो लोगों ने उसका अर्थ निकाल लिया। पॉइंट पॉइंट अकेला नहीं है भैया, इस अर्थ आयाम को, इसके डायमेंशन को समझने की जरूरत है। दीनदयाल जी उसको बहुत व्यापक रूप में रखते हैं, उसका केवल मैं छोटा सा अंश आपके सामने रखता हूं। 1966 की बात है कि तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, उस वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री सुचेंद्र चौधरी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रुपये का अवमूल्यन किया जाता है, यानी रुपये की कीमत घटाई जाती है। और जब घटा करके उन्होंने कहा कि आज रुपये का मूल्य जो है 0.118516 ग्राम सोने के बराबर होती है, उन्होंने उसे गोल्ड से कंपेयर किया। हम लोग कहते हैं, हम भी आज भी पढ़ते रहते हैं, रुपया डॉलर की तुलना में और गिर गया, और गिर गया, और गिर गया, बढ़ गया, गिर गया, तो लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। दीनदयाल जी ने जब पहली बार इस अवमूल्यन को देखा तो उन्होंने इसके ऊपर एक छोटी सी बुकलेट निकाली और उन्होंने कहा कि इसका क्या प्रभाव देश की अर्थनीति पर पड़ने वाला है। और मैं उस अर्थनीति का एक ही उदाहरण दूं, 5 जून 1966 को रुपये का जो मूल्य था वो घटा 5 तारीख को हमारे देश पर 2733 करोड़ रुपए का ऋण था, लोन विश्व का। 6 तारीख को ये लोन 4100 करोड़ रुपए हो गए, केवल इस बात के कारण कि पैसे का अवमूल्यन हुआ। पैसे का अवमूल्यन समग्र अर्थनीति का परिणाम है। दीनदयाल जी ने इसके ऊपर बहुत लिखा, बहुत क्रिटिसाइज किया, फाइनेंस मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने अपने देश के लोगों से कहा कि आप लोग अर्थनीति और अर्थ आयाम को समझने की कोशिश करिए, और जिन जिन लोगों को विश्व के अंदर और भारत के अंदर अगर इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ करने की अभिलाषा हो, उस सब ने इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बगैर कुछ संभव नहीं है। दीनदयाल जी जिस एकात्मता की बात करते थे और जिस विषय को कहते थे, उस विषय के संबंध में भी मैं बता दूं कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैसा है। स्वामी विवेकानंद जब भारत में, हम उनका फोटो वोटो लगाते रहते हैं, लोग सब उनके कोटेशंस लगाते हैं, बेलूर मठ से, यानी तब बेलूर मठ नहीं था, रामकृष्ण परमहंस चले गए थे, उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद भारत की परिक्रमा पर निकले तो कई दिन भूखे रहे, गंगा के किनारे बीमार थे, तो 4 दिन तक खड़े रहे, किसी ने दवा नहीं पूछी, रोटी नहीं पूछी। और फिर उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने गंगा का पानी पिया ये कहते हुए कि यही वैद्य है, यही औषधि है, यही आहार है, और यही मुझको ठीक करेगा। वही स्वामी विवेकानंद जब विदेश से लौटता तो चेन्नई के अंदर, तब के मद्रास में, कोलंबो में लोग घंटों कंधे पर से उतारते नहीं है। मालूम नहीं इस देश को ये क्या बात समझ में आती है। विवेकानंद वही है, दुनिया वही है। शिकागो का भाषण क्या दे दिया, हम आदमी की कदर ऐसे करने लग गए कि जैसे कोई अवतारी हो गए। और स्वामी विवेकानंद खुद लिखते हैं कि 2-3 दिन बाद भाषण देते देते मेरे को लगा कि मेरे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको या तो साधना करते समय या स्वप्न में, जैसा भी उनको लगा होगा, उन्होंने आकर के कहा कि शिकागो में क्या तू बोल रहा था, तेरी गलतफहमी है, तो बोल रहा था वहां पे भी मैं ही बोल रहा था, तो तू चिंता मत कर आगे भी मैं ही बोलूंगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विदेश से लौटने पर ही हमें हमारी चीज की कदर समझ में आती है। दीनदयाल जी जो कह गए उसके संबंध में यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत अच्छी चीज अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर 1992 में ऑस्लो संपूर्ण अधिवेशन के अंदर उसको स्वीकार किया है। मैं उसकी चार पंक्तियां जिसको यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया, अडॉप्ट किया, उसका अंग्रेजी और हिंदी आपके सामने सुनाता हूं। इससे आपको ध्यान में आएगा कि दीनदयाल जी को आज 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद दुनिया स्वीकारने लगी। दीनदयाल जी लिखते थे उसको जिस ढंग से यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है, उसकी चार पंक्तियां हैं। कोट, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज अबाउट द यूज ऑफ सर्विसेज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स विच रिस्पॉन्ड टू द बेसिक नीड्स एंड ब्रिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइल मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड टॉक्सिक मटेरियल्स एज वेल एज एमिशन ऑफ वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स over the life cycle of the services of products so as not to jeopardize the need of future generation. इसका मैं ऐसा कैसे हिंदी कर देता हूँ, और जब हिंदी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दीनदयाल जी बोल रहे हैं। हिंदी का अनुवाद होता है चिरस्थायी उपभोग व उत्पादन का अर्थ है ऐसी सेवाओं व उत्पादनों का प्रयोग जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हो लेकिन न्यूनतम प्राकृतिक संसाधनों व विषाक्त तत्वों का इस्तेमाल करते हुए भी बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित करती हो, साथ ही प्रदूषित तत्वों व कचरे का उत्सर्जन सीमित करना ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति में कोई जोखिम न रहे। दीनदयाल उपाध्याय बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन के। जिन लोगों ने रेल के डब्बे में उस दिन उनकी हत्या कर दी, उनको मालूम नहीं था कि आदमी को मारने से विचार नहीं मरता, विचार मनुष्य से ज्यादा बड़ा है, विचार बहुत दूर तक जिंदा रहता है। हम जितने संघर्ष में रहे पिछले 1,000-1,500 सालों में, इतने संघर्ष में दूसरा कोई सब कॉन्टिनेंट या देश होता तो पूरा का पूरा ही परिवर्तित हो जाता, और अगर हम नहीं हुए हैं तो इसका कारण जो है वो विचार है। इस विचार के कारण हम नहीं हुए, और स्थूल रूप में पूछो तो परिवार है, और उसमें भी अगर अंदर जाने की कोशिश करो तो महिला है। ये तीन चीजों ने हमें कुछ नहीं होने दिया, ना हम क्रिश्चियन हुए, ना हम मुसलमान हुए, कुछ भी नहीं हुए, आज हम जैसे हैं वैसे हैं। इस संघर्ष में हम जी सह पाए क्योंकि विचार हमारे पास था, दीनदयाल जी का ये विचार हमारे सामने है, और दीनदयाल जी इस प्रकार से जो कुछ व्यक्त कर रहे हैं उसको आज दुनिया धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। अर्थस्य मूलम ला करके छोड़ दिया। इसके बाद मैंने दो सेंटेंस इसके अंदर जोड़े, अब वो मैं चाणक्य के बराबर तो नहीं हूं, लेकिन उसके अंदर मुझे लगा कि आज के समय में जोड़ने की जरूरत है। तीसरी लाइन, पहली लाइन तो थी सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, तीसरी पंक्ति इसमें जोड़ी जाती है अर्थस्य मूलम सुशासनम। अर्थ सुशासन के बगैर नहीं आ सकता। कोई ये कहे कि अर्थ की उत्पत्ति एक व्यक्ति फैक्ट्री खड़ी कर सकता है, लेकिन अगर हम किसी देश के अंदर अर्थव्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं तो उस अर्थव्यवस्था के लिए देश में सुशासन की आवश्यकता है, और सुशासन में कमी कैसी। आज हम सब से मिलाकर के प्रत्येक व्यक्ति पे 21,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 21,000 रुपए का कर्जा पूरे देश के, गरीब अमीर अच्छे बुरे भिखारी राजा, विदेशी ऋणों से हम दबे पड़े। उत्पादन के अंदर मशीनों का असाधारण प्रयोग, ये जो नारा कभी बीजेपी देती है कि जो काम हाथ से होगा वो हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन से नहीं करेंगे, जो सेमी ऑटोमेटिक से होता है वो ऑटोमेटिक से नहीं करेंगे, ये मूल में दीनदयाल जी का विचार है। और दीनदयाल जी कहते हैं कि मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग, मानव श्रम पर मशीनों की प्रधानता अंतोगत अस्वस्थ आर्थिक व्यवस्था को खड़ी करती है, विशेष करके भारतीय जैसे श्रम प्रधान देश के अंदर जहां श्रम की बाहुल्यता है, उसके अंदर वो कहते हैं कि इसके कारण जो है एक असंतुलन का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इस पर दीनदयाल जी कहते हैं कि बगैर सोचे समझे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की हमको आदत है और एक्सपोर्ट करने में जो निरुत्साह आ जाते हैं। गणपति के अंदर गणपति चाइना से आते हैं, पूरा देश का फर्नीचर का मार्केट चाइना से था, पूरे देश की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स चाइना से आ गई, घर के शोभा के सारे वस्तु चाइना से आ गए, क्या चीज चाइना से नहीं आ रही। एक जगह अभी मैं नर्मदा के किनारे बना रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ चाइना की कोई चीज नहीं आन दूंगा, आप विश्वास करेंगे मेरे को रेड़ी से चोटी तक पसीना आ गया। मैंने कहा ये नहीं लगेगी, कल्पनी भी अच्छी हो, चाइना की मैंने अपने लगा लिया। बोले साहब टाइल्स लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, फिटिंग्स लगा लो, यहां तक कि मैंने अडॉप्टर्स और बाकी सारी चीजें दी तो वो भी चाइना की। इम्पोर्ट करने का ये जो पागलपन है अंतोगत्वा देश को खोखला करता है। और आज से 400 साल पहले यानी 50 साल पहले दीनदयाल जी कह रहे हैं, और 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, इसका मुझे अवसर मिला अभी छत्रपति शिवाजी महाराज पर मुझे एक पुस्तक लिखने को मिला, शिवाजी और स्वराज, नरेंद्र भाई जी ने उसकी प्रस्तावना लिखी और माननीय सरसंघ चालक जी ने, ब्रह्मजनी सरसंघ चालक जी ने उसको विमोचित किया था। उस पुस्तक के अंदर शिवाजी के युद्ध का कोई वर्णन नहीं है, वो पूरी की पूरी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है। उसके अंदर शिवाजी अपने स्थान पर एक पत्र लिखते हैं अपने एक अधीनस्थ मंत्री को, और वो कहते हैं कि बारदेश से आने वाला नमक, बारदेश यानी उस समय गोवा को बारदेश कहते थे, वहां से जो नमक आ रहा था उस नमक के कारण उनके राज्य के जो नमक उत्पादन करने वाले थे उनका नमक महंगा हो गया, उनका नमक सस्ता हो गया। तो शिवाजी पत्र लिखते हैं कि बारदेश से आने वाले नमक के कारण मेरे राज्य के नमक उत्पादकों की मूल्य बढ़ गया है और उनकी बिक्री नहीं हो रही है, इसलिए तत्काल प्रभाव से आने वाले बाहर से आने वाले नमक पे कर लगाया जाए। इसको कॉमर्स की लैंग्वेज में प्रोटेक्शन टैरिफ कहते हैं। अपने उद्योगों को, अपने उत्पादनों को संरक्षण करना। और उन्होंने कहा कि ये पत्र मिलते ही तत्काल प्रभाव से ऐसा टैक्स लगाया जाए कि वो नमक महंगा हो जाए और ये नमक सस्ता हो जाए जो अपने राज्य का नमक है। 400 से साल पहले की ये बात, इकोनॉमिक्स की इतनी अच्छी समझ एक व्यक्ति को है और आज नहीं, ड्रीम टीम, चार चार वित्त मंत्री, कोई अमेरिका में पढ़ा हुआ, कोई इंग्लैंड में पढ़ा हुआ। आपको इतनी समझ नहीं है कि हम आज भी सारे वेपन्स विदेशों से ला रहे हैं, 65 साल के अंदर हम कुछ भी बनाने की स्थिति में नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि इम्पोर्ट, और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं इम्पोर्ट को हतोत्साहित करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। वो अपने अर्थ आयाम के अंदर इस बात को प्रभावित करते हुए कहते हैं कमजोर अर्थव्यवस्था का लक्षण यह होता है कि वहां आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है। अब ये बात अलग है कि अब उसके ऊपर अपने काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी हमें बहुत लंबी यात्रा करना है। इन सारी चीजों का एक ही तंत्र है कि अर्थनीति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब जो तीसरा वाक्य जोड़ा गया था कि अर्थस्य मूलम सुशासनम, और सुशासन के संबंध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि दो चीजें सुशासन का मूल मंत्र है। एक स्व मंत्र का मंत्र होना चाहिए, मंत्र स्व का होना चाहिए और तंत्र भी स्व का होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, हमने 26 जनवरी 1950 को एक संविधान स्वीकार कर लिया। मैं मानता हूं कि वो हमारा मंत्र है, वंदे मातरम हमारा मंत्र है, फिलोसफिकली वो हमारा मंत्र है। हमने ये सारे मंत्र स्वीकार किए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के अंदर पिछले 65 वर्षों के अंदर देश का तंत्र खड़ा करने के लिए स्वतंत्र खड़ा नहीं हुआ, और हमने वैसी की वैसी ही कार्बन कॉपी खड़ी कर ली अपने देश के अंदर। इंपीरियल पुलिस थी, हमने IPS कर लिया, ICS था, हमने IAS कर लिया। अरे ताजुब तो आपको तब होगा जब अपन जाते हैं, अब यहाँ उसको क्या कहते हैं, सर्किट हाउस को, कहीं विश्रामालय कहते हैं, कहीं रेस्ट हाउस कहते हैं। ये जो सर्किट हाउस शब्द है ये बेसिकली अंग्रेजों का है। कलेक्टर घोड़े पे अपने अमले के साथ निकलता था और पूरे जिले के अंदर एक चक्कर लगाता था। उस चक्कर के अंदर वो जहां जहां रुकता था
वो सारे भवन सर्किट के अंदर आते थे, इसलिए सर्किट हाउस कहे जाते थे। 65 साल बाद में भी हम उन भवनों को सर्किट हाउस कहते हैं। आईपीसी की धाराएं 1860 की है, और 1860 की धाराएं कैसी है? एक धारा 304 AK, इसके अंदर अगर कोई मोटर यान में बैठा हुआ या ऐसी वाहन में रथ में बैठा हुआ व्यक्ति मोटर गाड़ी में वो अगर किसी सड़क चलते हुए व्यक्ति को मार डाले और वो मर जाए तो उसको 2 साल की सजा है। ये नियम क्यों बना 1860 की आईपीसी की धारा में? क्योंकि उस समय कार नाम की कोई भी चीज, टमटम नाम की कोई भी चीज अंग्रेज के पास होती थी, भारतीय के पास नहीं होती थी। आईपीसी की ही धारा है 294 के अंतर्गत अगर आप किसी को लठ मारेंगे, जिसको हम दंड कहते हैं, लाठी कहते हैं, अगर कोई किसी को मारेगा तो उसके ऊपर कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी को गाली बकेगा तो उस पर सजा है 294 में। क्यों? क्योंकि लाठी 1860 के अंदर अंग्रेज मारता था, भारतीय तो खड़ा रहकर के नाराजगी व्यक्त करता था, गाली गलौज करता था और क्या करता था। तो अंग्रेजों ने नियम बनाया कि लाठी मारने पर कोई सजा नहीं है, अगर किसी ने गाली बकी तो उसको सजा है 294 के अंदर उसको सजा मिल जाएगी। आज भी देश आईपीसी की धाराओं से चल रहा है, और 65 सालों से हमने स्व का तंत्र खड़ा करने का शुरू, और इसको दीनदयाल जी कहते हैं स्वदेशी का आग्रह, स्वदेशी चिंतन का अभाव, ये मूल समस्या। और मित्रों जब इस स्वदेशी को लोग पेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम से जोड़ देते हैं तो इसको जो करना चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वदेशी अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, यह अवधारणा है, ये केवल भूषा तक नहीं है, ये केवल भाषा तक नहीं है। हाँ, भाषा अपने साथ संस्कार लाती है, लेकिन स्वदेशी एक व्यापक दृष्टिकोण है, चिंतन के अंदर, मेरे रग रग के अंदर स्वदेशी है ये कहने वाला समाज खड़ा कर रहा, यही स्वदेशी की अवधारणा थी। दीनदयाल जी कहते हैं स्वदेशी की भावना का अभाव हमारे तंत्र की सबसे बड़ी, यानी उनका एक एक वाक्य जो है वो अपने आप में मंत्र है। अगर आप कुछ मत करो, एक वाक्य वो पकड़े उसका डिटेल करो तो 10 घंटे तक का डिटेलिंग होता है। ये जो तंत्र है, हमारे पास स्व का मंत्र तो था सुशासन के लिए, लेकिन स्व का तंत्र नहीं था। इसलिए आज भी देखिए जिले का जिलाधीश, जिले का कलेक्टर 350 संस्थाओं का अध्यक्ष, और मूल में वो रेवेन्यू का इंचार्ज है, तो रेवेन्यू का काम करता नहीं है, आने वाले सारे अतिथियों की सेवा करता रहता है, पॉलिटिशियन, व्यवस्थापक, बाकी सारा लॉ एंड ऑर्डर, 350 संस्थाएं, एक कलेक्टर से क्या अपेक्षा है। लेकिन तब 350-300 गोरे लड़के चाहिए थे जो कलेक्टर बन जाए और RSP बन जाए, बस उनसे देश चलाना है हमको, तो हमने केंद्रीय व्यवस्था कर दी जबकि हमें विकेंद्रित व्यवस्था होना थी। और मुझे कहते हुए बहुत दुखे कि जो लोग भी मेरे साथ जब सत्ता से दूर बैठते थे तो मेरे से कहते थे कि हमने विकेंद्रीकरण पे देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, हमको विकेंद्रीकरण पे सोचना चाहिए। और वो व्यक्ति जब सत्ता के केंद्र में आता है तो केंद्रीकरण करता है, ये भी मैं ही करूंगा, ये भी मुझसे पूछ के करो, ये भी मैं ही करने वाला हूं, ये आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। सब जगह उसको लगता है कि मैं फाइनल डिसीजन मैं करूं और मेरे से बात करना चाहिए। जहां भी सत्ता का केंद्रीकरण होगा वहां विकृति आती है। दीनदयाल जी कहते हैं विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और विकेंद्रित राज्य की व्यवस्था में ही सफलता के रहस्य छुपे हुए। इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमी ये भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, देश की राज्य व्यवस्था ये भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, और डिसेंट्रलाइज होते होते वो दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से होती होती ग्राम के पंचायत पर चली जाए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को के ऊपर भाषण की शुरुआत मुझे करना थी, राजनाथ सिंह जी उसका समापन करने वाले थे, 10 घंटे की वो बहस चली, उसके अंत में मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा बहुत सालों पहले एक व्यक्ति ने एक शेर कहा कि ता जिंदगी यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता। मैंने कहा इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, संसद के अंदर रीमेक करके कहता हूं कि 65 सालों से हम एक ही गलती करते रहे, ये जो दिल्ली अभी है इसको लुटियन नाम के इंजीनियर ने बसाया है। तो मैंने कहा 65 सालों से हम एक ही गलती करते रहे, धूल लुटियन की दिल्ली में थी, या कहो कि भूल लुटियन की दिल्ली में थी और हम गांव की चौपालें साफ करते हैं। हमने गांव के व्यक्ति को कहा कि तू गलत है, तू गंवार है, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तू धोती पहनता है, तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तू ऐसा करता है। हमने उसे ठोक ठोक के बिठा दिया कि तुम गलत हो, और जबकि गलती तो साहब नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में थी, गलती तो साहब राज्यों के सचिवालय में थी, आपने गलती पंचायत में ढूंढ ली। दीनदयाल जी कहते डिसेंट्रलाइज करिए, और इस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सुशासन जरूरी है। और अंत में एक बात जो कही, जो जो सेंटेंस दो के बाद चौथा सेंटेंस जोड़ा गया है वो है अर्थस्य मूलम सुशासन। चौथा वाक्य इसके अंदर जुड़ता है सुशासनस्य मूलम संघ। और संघ से कोई केवल यही तात्पर्य नहीं निकाल लेना चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भगवान बुद्ध भी कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। हर अच्छे कामों को करने के लिए एकत्रित हुए समूह को संघ कहते हैं। न दाऊद, न ओसामा, न आईएसआईएस, ये संघ नहीं, ये गिरोह है, ये बदनियती और बददिमागी से उपजे हुए संगठन। सब प्रयत्नों के लिए किए जाने वाले कामों के लिए जब लोग एकत्रित आते हैं और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसके अंदर यज्ञ में हवन देते हैं, उसको संघ कहते हैं। और यहां कह रहे हैं सुशासन के लिए संघ की जरूरत है, और जब संघ की जरूरत होती है तो दीनदयाल जी यहां पर कहते हैं कि संघ का केंद्र क्या है। वो कहते हैं मनुष्य संघ का केंद्र है। मनुष्य यानी क्या? मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। हम सब एक स्वतंत्र मन है, हम सब एक स्वतंत्र बुद्धि है, हम सब अपना अपना शरीर है, और हम सब की अपनी अपनी आत्मा है। आत्मा को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जो भारत के तत्व ज्ञान को ठीक से समझता है वो जानता है कि आत्मा जो है वो घटाकाश की तरह है, हर बर्तन में विद्यमान है, बर्तन के टूटने के बाद में भी वो यथावत रहती है। इसलिए आत्मा को अलग करके मन, बुद्धि और शरीर को दीनदयाल जी कहते हैं कि ये अनुशासन के लिए, ये संघ के लिए जरूरी है। और उसी को परमपूजनीय डॉक्टर जी कैसे अपने ही वाक्य में कहते हैं, वो कहते हैं कि समाज को संस्कारित करने से ही सब कुछ खड़ा होगा, राज्य शासन व्यवस्था बदलने से कुछ होने वाला नहीं। जो बात उन्होंने आज से 7500 साल पहले करी वो एज इट इज लागू होती है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो आज से 2000 साल पहले भी ऐसी रहेगी। क्यों? क्योंकि मन, बुद्धि, शरीर, और इसको दत्तोपंती भी बहुत अच्छे से बोलते थे मुझे भी सर्वे सर्वा राज्य का बना दोगे, और अगर मैं ठीक नहीं हूं तो कुछ होने वाला नहीं है। अंतोगत्वा समाज परिवर्तन ही है मूल उद्देश्य। और डॉक्टर जी कहते हैं समाज को संस्कारित करना यह मूल काम। इस मूल काम को करने के लिए दीनदयाल जी कहते हैं मन, बुद्धि और शरीर और आत्मा से युक्त जो कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति से ही समाज परिवर्तन संभव है। वह संघ संगठन की मूल अवधारणा घटक है, वो उसकी उसका एटम है, उस एटम से इकट्ठा होकर के ये सारी चीजें होती है। और इसी को दीनदयाल जी आगे कहते हैं कि एक व्यक्ति से मिलकर समाज बन रहा है, समाज से राष्ट्र बन रहा है, राष्ट्र में प्रकृति है, और प्रकृति और फिर वो परमेश्वर की कल्पना करते हैं। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर अलग रख दीजिए, मैं बात करते करते विषय को आध्यात्मिक बनाने में कम भरोसा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लोग आध्यात्मिक बातें करने लगते हैं तो एक सुपर मेंटल कंडीशन में एक महान संत थे उन्होंने ऐसा किया, खुद क्या कर रहे हो, तो बोले मेरा हिसाब मत पूछो, मैं महानता की सारी बातें करूंगा। नहीं, उसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, व्यक्ति, समाज, उसके बाद में आप प्रकृति और राष्ट्र, इन चार चीजों के ऊपर दीनदयाल जी कहते हैं इनके समुच्च के बीच में समन्वय जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति। ये चारों जब एक दूसरे से सम्मिलित होकर के चलती है, कोई रात को मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। खान अब्दुल गफार खान ने कभी अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में वोट नहीं डाला, भारत से मकान खाली नहीं किया, वो हमेशा वोट डालने भारत आते थे, उन्होंने कभी भारत का विभाजन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि गांधी तुमने गलती की है भारत का विभाजन करके, और एक बार जब वो बलूचिस्तान से आ रहे थे वहां से ट्रेन से, तो दिन भर रात भर और एक पूरा दिन 36 घंटे की यात्रा थी, तो एक खिड़की के पास में थर्ड क्लास में बैठे थे, तो उनको जो लेने लोग दिल्ली में गए तो उन्होंने कहा कि आप सो जाते हैं ना, सीट तो खाली थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक ही व्यक्ति का टिकट लिया, तो एक व्यक्ति के बैठने के लिए जितनी जगह चाहिए थी उतनी मैंने प्रयोग की, बाकी खेलने के लिए मेरे पास नहीं था, मेरा उसके लिए टिकट नहीं। ये व्यक्ति समाज के अंदर काम करता है, और जब व्यक्ति समाज में काम न करे तो समझना चाहिए कि मैं इसलिए हमेशा बहुतायत कहता हूं कि आप मुझे मेरी टोपी से मत पहचानिए, मेरे वेश से मत पहचानिए, मेरे भाषण से मत पहचानिए, व्यक्ति को उसके निर्णयों से पहचानना चाहिए कि क्या पसंद करता है। चित्रकूट में भगवान बैठे हुए थे, राम तो उस समय भरत सेना सहित आ गया, तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये अभी भी मान नहीं रहा है, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ, और उड़ गया धनुष लेकर के, तो राम ने कहा नहीं रुको लक्ष्मण तुम शांत रहो, और उन्होंने निषाद और बाकी लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि भरत के पास चार चीज लेके जाओ, स्वर्ण, मछली, फल और राज्य के प्रशासन में प्रयोग होने वाली ऐसी बहुमूल्य वस्त्र वस्त्र हो, और देखना कि भरत क्या करता है, वो आके मुझे बताओ। वो सब लेकर के गए, भरत ने फल रख लिए और बाकी सबको प्रणाम करके कहा कि मेरे तार जो है, मेरे जो आता है वो वन में है, वैसे तो उनकी दी हुई सब चीजें मुझे स्वीकार है, लेकिन अभी मैं फल ही स्वीकार करूंगा, ये सब आप वापिस ले जाइए। तो राम ने कहा कि रावण लक्ष्मण भरत लड़ने नहीं आ रहा है। निर्णय से राम ने पहचान लिया कि ये व्यक्ति कौन है। कोई भी आदमी किसी को स्पेयर मत करिए, सबसे पहले खुद, बाद में सारे अपने आसपास काम करने वाले लोग, अपने से बड़े, अपने बराबर, अपने से छोटे, हर व्यक्ति के निर्णय में देखो कि ये कौन से व्यक्ति को पसंद करता है, इसका निर्णय क्या है, इसने क्या पसंद किया, और जो इसने पसंद किया वही ये व्यक्ति है। व्यक्ति की पहचान उसके निर्णय होता है, व्यक्ति की पहचान उसका भाषण नहीं होता। अपन बहुत अच्छा भाषण सुनते हैं तो बड़े अभिभूत हो जाते हैं, अरे वाह क्या भाषण है, अरे भाषणों से भी व्यक्तियों का मूल्यांकन होता है, कपड़ों से भी मूल्यांकन होता है, तिलक लगाने से या धोती पहनने से मूल्यांकन होता है, ये तो मेरे बाकी परिवेश है, मेरा शोक का विषय पहनता हूं, लेकिन मुझे पहचानना है तो निर्णय से पहचानिए। संघ की समस्त कृति के अंदर, चाहे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इन तीनों के अंदर व्यक्ति की पहचान उसके निर्णयों से होनी चाहिए। और निर्णयों के संबंध में कई बार लोग कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, विशेष करके मैं पॉलिटिकल फील्ड में देखता रहता हूं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज लोग सब जगह करते हैं। मैंने तो बोलते कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मैंने कहा क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दो दिन तक नगर निगम का नल में पानी नहीं आता है तो क्या गटर का पानी मटके में डाल लेते हो, बेटी की शादी भी हो रही है तो क्या किसी से भी शादी कर देते, क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्यों करते हो कॉम्प्रोमाइज, नहीं साहब नहीं है तो बेटी है हमारे पास रहेगी, मैं हूं ना, नहीं है तो पानी पीने को नहीं है चलेगा, लेकिन गटर का पानी नहीं लगा, हर व्यक्ति को हर काम नहीं दिया जा सकता। वैसे ही संघ जो शब्द है, सुशासन करना है तो अंतोदत्व कार्यकर्ताओं का पूर्ण समूह चाहिए, और वो कार्यकर्ताओं का जो समूह है वह निर्णयों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, अन्यथा न कुतुबुद्दीन ऐबक, न सम्राट चंद्रगुप्त, न तो वो नहीं चलेंगे, क्योंकि ये देश मूल में धार्मिक है। अचानक एक बूढ़ी महिला खड़ी होकर के बोल देती साहब यो मत करो यार, ये अधर्म है। मेरा अनुभव, एक जगह में मेरी बहन की शादी करने गया तो करीब करीब बात पक्की हो गई, अंदर से वृद्ध महिला है, उसने कहा कि अभी 6 पीढ़ी नहीं हुई है, बात शादी नहीं हो सकती, यानी आपके परिवार और हमारे परिवार के बीच में भी 6 पीढ़ियों का बंधन कटा नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। ये कहने का साहस ही भारत है, ये कहने की हिम्मत ही भारतीय समाज की हिम्मत है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर रोज देख रहा चल रहा, ये निर्णय करने का, ये सही और गलत को पहचानने की स्थिति है। दीनदयाल जी कहते हैं व्यक्ति समाज और प्रकृति के बीच में संघ यानी सुशासन तभी खड़ा हो सकता है जब उस सुशासन को खड़ा करने वाला व्यक्ति संस्कारित है, योग्य है, सक्षम है। और अंतिम बात कह रहा हूं, इसको भी दीनदयाल जी व्यक्त करते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं, पवित्र लक्ष्यों को अपवित्र माध्यमों से नहीं प्राप्त किया जा सकता और कोई इसके नियम में बदलाव लाने की कोशिश न करे। दीनदयाल जी कहते हैं, मंत्र पवित्र है, वंदे मातरम पवित्र है, भारत माता की जय पवित्र है, वो भी पवित्र जो लक्ष्य होते हैं वो पवित्र है। लेकिन उस पवित्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन प्रयोग हो रहे हैं, जो माध्यम प्रयोग हो रहे हैं, जो चीजें प्रयोग हो रही हैं, वो चीजें अगर अपवित्र हैं तो वो लक्ष्य साध्य नहीं होंगे। इसलिए दीनदयाल जी से कहा कि आप चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो, तो उन्होंने कहा कि आपके संबंध में कहते थे तो ब्राह्मण समाज के लोग आपको ज्यादा वोट देने लग जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे चुनाव लड़ना नहीं, और अगर आप लड़ा के जिताना चाहते तो मुझे जीतना भी नहीं। यार डिस्ट्रिक्ट ऐसी होती, इसके अंदर मैं कृष्ण की नीति के समर्थन में खड़ा रहता हूं, लेकिन इस प्रकार के जो स्लिप्स होते हैं कि ठीक है जान पे मार देना, ठीक है नरुआ या कुंजरवा बोल देना, ठीक है ऐसा कर देना, ये करने के लिए केवल हे केशव तुम ही योग्य हो, अन्यथा तो समझ में नहीं आएगा कि कब मैंने इतनी सी स्लिप मारने के लिए जगह बनाई थी और कितनी इतनी बड़ी स्लिप मार दी। क्योंकि ये सब जहर जैसी चीजें हैं, आपको अनुपात में ही लेना, इतने मिलीग्राम्स के अंदर ही लिया जा सकता है, उससे ज्यादा से लेने पर चीज खत्म हो जाएगी। पवित्र लक्ष्यों को अपवित्र माध्यमों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसका दीनदयाल जी खूब आग्रह करते हैं। तो मैंने कहा ना कि आप वो व्यक्ति उस नक्शे को छोड़ के चला गया और उसके बाद उस नक्शे को कुछ भी करना है, जीतना है, क्या थी? क्या कर रहे हो जी, कहाँ चले जाओगे? और अगर जीतना ही है तो ठीक है ना, हम यानी मैं आपको जीतने के मार्ग के अंदर अवरुद्ध नहीं हूं, दीनदयाल जी अवरुद्ध होने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अपवित्र माध्यमों के प्रयोग करने से सबसे बड़ी समस्या होती है कि धीरे धीरे व्यक्ति, जैसे कई बार कहने में आता है कि अगर आपने एक दो जगह चीजों में सही वो कॉम्प्रोमाइज किया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अधीनस्थ सारे कार्यकर्ता वैसा करने लगे, फिर आपके समकक्ष लोग करने लग गए, फिर ऊपर के अधिकारी भी वैसा निर्णय लेने लग गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, किसी भी रूप में स्त्री सेना के साथ अभियान में नहीं जाएगी। यहां मैं पवित्र और अपवित्र माध्यम की बात नहीं कर रहा, लॉ की बात कर रहा हूं, शासन कैसे चलता है उसके कारण। न नाचने वाली, न काम के लिए, न पत्नी, न मित्र, न सखा, न कोई, बड़ी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब अहमद शाह अब्दाली के सामने मराठा सेना लड़ने गई तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लोग जब चले लड़ने के लिए तो घर से सब परिवार वालों को ले गए। उन्होंने कहा कि पानीपत में लड़ेंगे और बाद में चारधाम कराएंगे। 1,00,000 से ज्यादा हिंदू, मध्याह्न का सूर्य अभी ढला भी नहीं था, काट दिए। और जितने मरे उससे ज्यादा स्त्री और बच्चे जो छावनियों के अंदर थे वो मार दिए गए। 100 साल में शिवाजी महाराज का नियम भूल गया, 100 साल में भूल गए कि बच्चों को युद्ध में साथ में नहीं ले जाना है। अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए मार्ग को जब जब भी कोई अगर छोड़ेगा तो उसका वही हर्ष होगा जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में हिंदू सेना जीतने वाली पराक्रमी योग्य सेना हार गई, अपने से आधी सेना से, क्योंकि महाराज का दिया हुआ सूत्र आपने नहीं स्वीकारा। इतना कठोर अनुशासन करते थे कि चेन्नई से लौटते समय उनके एक अधिकारी ने किसी बेदलूर की जो रानी थी उसको गलत दृष्टि से देखा तो महाराज ने कहा कि इसकी आंख निकाल दो। तो लोगों ने कहा कि गलती के अपराध में गलती की तुलना में सजा ज्यादा है। उन्होंने कहा नहीं, सेना में अनुशासन पत्र बताया करने के लिए जरूरी है। तो अर्थ का अनुशासन है, धर्म का अनुशासन है, सुशासन में अनुशासन है, और अंतोगत्वा यह जो संघ शक्ति है, जो ताकत इस देश को खड़ा करना चाहती है, इस देश में सुशासन खड़ा करना चाहती है, सुशासन से हम एक आर्थिक संपन्न प्रभुता संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं, वो अंतोगत्वा हम इस विश्व को सुखमय बनाना चाहते हैं। और उस सुखमय बनाने के अंदर भी दीनदयाल जी ही फिर से यूनाइटेड नेशन में 2012 की एक वाक्य कहकर के विषय को खत्म करता हूँ कि 2012 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने, चूंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के UNFCCC की सारी बैठकों के अंदर जाने का अवसर मुझे स्वभावगत रूप से मिलता रहता है, तो उसके अंदर वो लोग एक 2012 के अंदर उन्होंने एक विषय स्वीकार किया, और उस जो स्वीकार किया वो दीनदयाल जी से कितना नज़दीक आता है, जो लोग दीनदयाल जी को पढ़ रहे होंगे, जो हिंदू चिंतन की गहराइयों को समझते हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन उसको स्वीकार करते हुए कहता है, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू इकोनॉमिक क्राइसिस द वर्ल्ड इज नॉट शॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, दुनिया में कमी नहीं है। टू हेल्प एलिवेट सम ऑफ द चैलेंज वी फेस, ए ग्लोबल कम्युनिटी नीड्स टू बी अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एज वी मूव क्लोजर टुवर्ड्स द लो कार्बन लाइफ स्टाइल एंड ग्रीन इकोनॉमिक्स। यही तो बात दीनदयाल जी कह रहे थे, मेरे यूनाइटेड नेशन के दोस्तों, वो कह रहे थे कि सादा जीवन ही करना है, वो कह रहे थे कि संसाधनों का सीमित प्रयोग करिए, वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें हैं। हम सब लोग भाग्यशाली थे कि वो हमारे पूर्वज थे, हम भाग्यशाली हैं कि उन्होंने मंत्र रूप में बहुत सारी बातें की, हम इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने उनको समझने की मति दी, वरना दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मैं युधिष्ठिर जितना धर्म जानता है उतना ही धर्म में भी जानता हूँ, नच में प्रवृत्ति, लेकिन मैं क्या करूँ, प्रवृत्ति से मरा हुआ हूँ, जब घटना चीज होती है, जब चीज सामने आती है तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, वरना दुर्योधन कहीं से भी धर्म को जानने के मामले में, इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मन और बुद्धि को क्या मालूम है, शरीर क्या कर रहा है, पूरा समुच्चय क्या कर रहा है, उसको ही दीनदयाल जी उद्घाटित करते हैं। मुझे लगता है कि दीनदयाल जी के जन्मदिन पर उनके इन विचारों को स्मरण करना, उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करना, जिस एक गुड गवर्नेंस की उन्होंने चर्चा की थी और जिस गुड गवर्नेंस की वो चर्चा कर रहे हैं 500 से 400 साल पहले, कभी फिर अवसर आएगा तो मैं शिवाजी महाराज के उस विषय को आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा कि कैसे गुड गवर्नेंस 400 साल पहले एक व्यक्ति खड़ा करता है, और अगर आज किसी के मन में भी ये इच्छा हो कि मेरे को अच्छा शासन करना है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने रखना चाहिए, उनके किए हुए कामों को याद करना चाहिए, उनकी एक एक बातों को याद करना चाहिए। दीनदयाल जी जो कुछ कर गए थे उसमें से कर कुछ भले न पाए हों, शिवाजी महाराज ने सब बातों को कर गए करा है, बहुत डिटेल में किया है। 36 साल के सार्वजनिक जीवन के अंदर 6 साल ही उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और हम इंदर अफजल खान का युद्ध, इसका युद्ध, उसका सब मिला लो तो 6 साल है, 30 साल केवल उन्होंने मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स अर्थ के आया यही खड़े और करके रखा कैसे खड़े। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हम सब लोगों को बढ़ने की जरूरत है, विश्व भारत की ओर बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहा है और भारत हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, ये करेंगे, उसको आशा है कि शायद ये कर देंगे, उस आशा को पूर्ण करने की सामर्थ्य पूर्वज हमें दें और सब मिलकर के उस काम को करने में समर्थ हों। पूरी दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, और उन्होंने हमें याद, हमने उन्हें ठीक से याद किया है ऐसा माना जाएगा। धन्यवाद।